ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले एक व्यक्ति था और एक दिन उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। भांति भांति के इलाज कराए परंतु वो ठीक नहीं हुआ। बेटे की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। जब सारे ही इलाज असफल हुए तो वो एक ज्योतिषी से मिला। उस वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है परंतु एक शर्त है। वो शर्त बहुत मुश्किल शर्त है, शायद पूरी न भी हो, परंतु हां यदि वो शर्त पूरी हो जाए तो तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है। वो शर्त ऐसी है, स्वाति नक्षत्र हो, बारिश हो रही हो और जंगल में कहीं पर एक इंसान की खोपड़ी हो जिसमें थोड़ा सा पानी हो, आकाश से गिरा हुआ, और एक प्यासा मेंढक वह पानी पीने के लिए उस खोपड़ी के पास आ जाए और उस मेंढक का पीछा करते करते एक सांप आ जाए और वो मेंढक आगे छलांग लगा ले और सांप के मुंह से विष की कुछ बूंदे उस जल में गिर जाए। यदि वो जल तुम्हारे बेटे को पिलाया जाए तो शायद तुम्हारा बेटा बच सकता है। वो भगत था व्यक्ति, तुरंत उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कुछ कर, हे अनाथों के नाथ, हे दीन दयाल, हे करुणा निधान, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु। हृदय से आर्त पुकार निकली और तुरंत उसने पंचांग खोला और देखा कि आज ही स्वाति नक्षत्र है। खुश हो गया, कुछ हो सकता है, और जंगल की ओर निकल पड़ा। और जब जंगल की ओर जाने लगा तो अचानक बारिश होने लगी। हिम्मत और बढ़ी, सोचा और प्रार्थना की, हे प्रभु तूने दो चीजें तो कर दी, अब बाकी शर्तें भी पूरी कर दे। और वो जंगल से गुजरने लगता है और जैसे ही जंगल से जाता है देखता है कि एक मनुष्य की खोपड़ी वहां पर पड़ी हुई है और धन्यवाद देता है प्रभु को और कहता है कि तूने इतना कर दिया, बाकी भी कर दे, तेरी कृपा जिस पर हो जाए उस पर सबकी कृपा हो जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी होई। और उतने में ही एक मेंढक वहां आ जाता है पानी पीने के लिए और उसका पीछा करते करते एक सांप वहां आ जाता है। मेंढक छलांग लगाता है और सांप के मुंह से विष की बूंदे उस जल में गिरती है और वो व्यक्ति इतना खुश हो जाता है, इतना धन्यवाद देता है उसको। वो जल लेकर आता है, उसके बेटे को पिलाता है और उसका बेटा ठीक हो जाता है। क्या हुआ यहां पर? यदि वो खुद चाहता अपने प्रयत्न से तो शायद ये न हो पाता, सारे योग जुड़ गए। स्वाति नक्षत्र भी था और बारिश भी हो गई और वो खोपड़ी भी मिल गई और एक मेंढक भी आ गया और पीछा करते करते सांप भी आ गया और सांप के मुख से विष की बूंदे भी गिर गई। उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में भी आज का जो दिवस है सारे योग जुड़ गए और आप सब भी यहां पर उपस्थित हो गए। किसी को कहीं जाना था, किसी को कुछ करना था, परंतु जिसने ठान रखा है प्रकृति परिस्थितियां सब कुछ सहयोगी बन जाती है और सारे ही योग स्वतः ही जुड़ जाते हैं और इतनी सारी महान आत्माओं का संग मिल जाना ये भाग्य ही है। है भाग्य? सबको लगता है? भक्ति में कहावत है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा जब हो जाए उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण एक ही है कि बार बार महान आत्माओं का संग मिल जाना, बार बार श्रेष्ठ आत्माओं का संग मिल जाना, ऐसे विश्व कल्याण के ठेकेदारों का संग। आज की मुरली से कोई छोटी बात है तो सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी देनी है। वारे मैं, वारे मेरा भाग्य, मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं। यदि घोषणा हो जाए कि जो अपने आप को सबसे अधिक भाग्यवान समझता है वो अपना हाथ खड़ा करो, तो हर एक क्या समझता है सबसे ज्यादा बड़ा हाथ, लंबा हाथ किसका खड़ा होगा, हमारा या मेरा? मेरा, जिन्हें स्वयं भगवान मिल गए वो कितने भाग्यशाली है। एक सेकंड में आज बाबा ने कहा तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया और एक सेकंड में तुम दूसरों को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के निमित्त बन गए। सारा खेल एक सेकंड का है, ज्ञान एक सेकंड का, योग एक सेकंड का, धारणाएं एक सेकंड की और सेवाएं एक सेकंड की। एक सेकंड का ज्ञान रचता और रचना, एक सेकंड का ज्ञान अल्प और बे, एक सेकंड का योग, कौन सा योग? मैं और वो, बस उसकी किरणें पड़ रही है निरंतर, केवल व्यर्थ संकल्प की वो दीवार ना रखो। किरणें आ रही है, अविरत बरस रही है, बाहर वर्षा हो रही है और कोई कहे कि मैं भीग नहीं रहा हूं, बाहर प्रकाश है और कोई अपने आंखों पर ही हाथ लगाकर बैठा है और चिल्ला रहा है अंधकार अंधकार अंधकार, तो क्या कहा जाएगा? ईश्वरीय प्रेम की वर्षा इस समय हो रही है। हम कितने भीगे हैं, तर बतर हो गई आत्मा या केवल ऊपर ऊपर से? स्वयं को ईश्वरीय प्रेम में डुबो देना, भिगो देना, यही तो प्रेम है। भोजन भवन भलो नहीं लागे, ऐसी अवस्था है, केवल वही अच्छा लगता है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्या ऐसा ईश्वरीय प्रेम से हमने स्वयं को भर दिया है? एक सेकंड की धारणा है। ब्राह्मण संस्कार, नाम संस्कार हुआ और जन्म से ही सारी धारणाएं हो गई, करनी नहीं पड़ी, हो गई। और सेवा भी एक सेकंड की, खजाने जो भरे हैं अब वो देने हैं, अनुभव जो किए हैं अब कराओ। तो आज इस भट्टी में केवल सुनना नहीं है, क्या करना है? अनुभव। धर्म की परिभाषा एक शब्द में है, धर्म अर्थात अनुभूति, रिलीजन इज रियलाइजेशन। कितने समय से कौन है, कितने कितने क्या पढ़ा है, क्या किया है और कितनी सेवाएं की है, यदि ये सब किया पर अनुभव नहीं किया तो शायद कुछ नहीं किया। अनुभव वह पूंजी है जो मौन में प्राप्त होती है। अनुभव वह पूंजी है जो आत्मा को तभी मिलती है जब वो ईश्वरीय प्रेम नशे में डूब जाती है। हमने स्वयं को कितना डुबाया है। परमात्मा प्रेम की सरिता बहने लगे, इसलिए इस भट्टी में केवल सुनना नहीं है। शब्द जो कानों पर पड़ रहे हैं, साथ साथ योग चालू रहे, इस संकल्प के साथ कि आत्मा बैठी है, ऊपर से परमात्मा किरणों की वर्षा हो रही है और कानों में भगवान के महावाक्य, मुरली के महावाक्य, चिंतन के महावाक्य, ज्ञान की बातें पड़ रही है और मैं आत्मा उन बातों को धारण करते जा रही हूं। शब्द शब्द के बीच जो मौन है, वाक्य वाक्य के बीच में जो अंतराल है, उसमें अनुभव करना है आत्मिक स्थिति का। जैसे मैं आत्मा भरती जा रही हूं, अनंत ज्ञान की वर्षा हो रही है, भगवान स्वयं मेरे साथ है, यह अनुभव। तो आज हम एक सुंदर विषय से चालू करेंगे। मुरलियों में कई बार आता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, परंतु वास्तविक दोहा है, चढ़े तो चाखे राम रस। और कबीर ने आगे लिखा है, नीचे यदि गिर जाए तो चकना चूर। चेतना छलांग लगाती है, जैसे ही कोई इस यज्ञ में आता है, इस ज्ञान में आता है, बहुत उमंग उत्साह से भर जाती है और छलांग लगाती है ऊपर और ऊपर और ऊपर। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, राम रस वो पीती है, पिबत राम रस। और फिर धीरे 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 कुछ और होने लगता है, फिर एक दूसरों को देखना चालू हो जाता है। भक्ति में गायन करते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और इस ब्राह्मण परिवार में जब आ जाते हैं तो ब्राह्मण आत्माओं की ये गति होती है कि अवगुण देखते देखते कहते हैं, इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं, इस परिवार की आत्माओं में। परचिंतन, परदर्शन, और वो जो उमंग था, वो जो उत्साह था, धीरे 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 कम कम होने लगता है। फिर वही ज्ञान की बातें, वही मुरली, बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, बाप आए हैं तुम सबको ले जाने, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, बाप समान बनना है, तुम्हें सेवा भी करनी है, दिव्य गुण भी धारण करने हैं, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। ये बातें सुनते 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 सुन हो जाते हैं कान, फिर कहते हैं वही वही बाबा बातें करते रहता है, कुछ भी नयापन नहीं है, और जीवन का उमंग उत्साह कम कम होने लगता है। जो पुरुषार्थ की लगन थी, जब आए थे, कैसा नशा था, क्या कर दूं और क्या नहीं लगता था सभी को। जब मुरलिया सुनते थे कि जाकर सबको संदेश दो, गूंज रहा शिव का संदेश, ऐसा नशा। मुरलियों में कभी वाक्य आया था, तुम्हें ऐसा नशा चढ़ना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए। वैसा ही अनुभव होता है कि क्या करूं और क्या नहीं, कैसे सारे विश्व में भगवान का संदेश दे दूं। परंतु धीरे 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 इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं। बाबा आप बहुत अच्छे हो, ये परिवार ठीक नहीं है, इनको ठीक करो पहले। फिर वही मुरली, वही अमृत वेला, और अमृत वेला हो गया। और उसके बाद में आवाज आती है अमृत वेले के तुरंत बाद, कहां से आवाज आती है, खटिया से। क्या पुकारती है खटिया, आ जाओ मेरे लाडलो, त्यज अगर मगर, सब कुछ छोड़ो, बस मैं तुम्हें पुकार रही हूं। त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर राजयोग की राहों में, बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं। कौन पुकार रहा है, बेड। कब पुकार रहा है, अमृत वेले के बाद, ताज तख्त तिलक साथ में लेकर आया हूं। अमृत वेला हुआ और चलो नींद के आगोश में, इंतजार ये कब बज जाते हैं पौने पांच, बजा चलो भागो। अच्छी सी नींद आ जाती है, स्वप्न भी दिख जाता है, बढ़िया सा एक हाथ स्वप्न। और फिर मुरली में गए सेवा केंद्र पर, फिर डायरी खोली, मीठे बच्चे, लिखना चालू किया, प्रश्न लिखा, फिर उत्तर लिखा, फिर डायरी बाजू में रखी, फिर डोलना थोड़ा सा चालू किया, फिर थोड़ी सी झपकी इधर उधर, और कभी कभी तो थोड़ी ज्यादा ही झपकी, और फिर मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे एकदम जागरण, डायरी उठाई फिर, और फिर धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो वरदान स्लोगन, और आज का काम पूरा हुआ, डायरी बंद, अब कल मिलेंगे। कोई कोई सेवा केंद्रों पर माता है डायरी भी नीचे ही छोड़कर जाती है टेबल के नीचे, दूसरे दिन आने के बाद ही खोलना, और फिर सेंटर से निकलना, और चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गया, सीढ़ियां उतरते उतरते प्रश्न कहां खो गया, फिर बाद में उसकी कोई खबर नहीं, लापता, 24 घंटे के लिए लापता। और घर पहुंचते पहुंचते वरदान खो गया, और नाश्ता बनाते बनाते स्लोगन चला गया, और शाम होते होते मुरली बहुत अच्छी थी, तुम आए क्यों नहीं, अरे पर क्या था वो मत पूछो, बस क्या था वो नहीं पूछना, परंतु बहुत अच्छी थी। बहन जी ने ऐसी मुरली सुनाई, वाह मजा आ गया, तुमको आना चाहिए था, पहले भी कहा था, तुम आते क्यों नहीं, अरे पर था क्या वो मत पूछो, क्या था वो डायरी में लिखा है। अमृत वेले उठना, मुरली क्लास जाना, मुरली सुनना, दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल बीच बीच में करना, योग युक्त होकर भोजन बनाना, योग युक्त होकर भोजन खाना, नुमा शाम का योग करना, रात में चार्ट लिखना, और बाबा की याद में सो जाना, ये है साधारण पुरुषार्थ। इसे क्या कहा जाता है, साधारण पुरुषार्थ। हम कौन सा कर रहे हैं, सब साधारण तो नहीं कर रहे, इसके नीचे वाला। अगर ये साधारण पुरुषार्थ है तो तीव्र क्या है, फिर सब तो कर रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, जब बुलाओ तब आ जाते हो और सेवाएं सारी करते हो, परंतु ये भी साधारण पुरुषार्थ है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, कुमारियों से मुलाकात, लगन को क्या कर दो, अग्नि बना दो, आग चाहिए आग। आग जब जल रही हो तो जानवर नहीं आ सकता, आग जब जल रही हो तो कोई भी बंधन डालने वाला नहीं आ सकता, कुमारी अर्थात निर्बंधन, कुमारी अर्थात शिव शक्ति, कुमारी अर्थात शिव के साथ रहने वाली, शिव के रंग में रंगी हुई, वो मैं हूं। यदि ऐसा ही धीरे धीरे पुरुषार्थ चल रहा है चींटी की गति से, कैसे पहुंचेंगे? मंजिल बहुत भारी है, बहुत ऊंची है, और उसमें से फिर बीच बीच में नीचे गिरना, श्रीमत का उल्लंघन, सीट से नीचे उतर जाना, आज सुबह की मुरली, फिर दो दो दिखाई देता है, करूं कि नहीं करूं, क्या करूं कि नहीं करूं, यथार्थ है या अथार्थ, अयथार्थ है, सार है या असार है, डिप्लोपिया, स्पिरिचुअल डिप्लोपिया, मेडिकल भाषा में डिप्लोपिया अर्थात दो दो दिखना, स्पिरिचुअल एनीमिया, खून की कमी, चार चीजें हम चर्चा करेंगे जिसमें ऊपर चढ़ना है, और उन्हीं चार चीजों में नीचे उतर जाते हैं और फिर चकनाचूर हो जाते हैं और फिर पश्चाताप और फिर प्रायश्चित और फिर उसके बाद में उठ नहीं पाते, दिल शिकस्त हो जाते, फिर उसके बाद में इच्छा नहीं होती, क्या पुरुषार्थ करे, वही वही पुरुषार्थ, वही वही मुरली, वही वही सेवा, वही वही अमृत वेला। पहला ज्ञान, ज्ञान अर्थात मुरली सुनना और मुरली सुनाना नहीं, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात चिंतन, ज्ञान अर्थात वो ज्ञान रग रग में समा जाए, ज्ञान की बुलबुल टिकलू टिकलू करती रहे। पढ़ लिया और हो गया और लिख लिया और नोट कर लिया, यह तो शुरुआत है, साकार महावाक्य है बाबा के, सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, मुरली सुनकर वापस आ जाना, ये है पुरानी चाल, चाल को बदलो, उसको ग्रहण करना है, ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान की स्टडी, ज्ञान की चर्चा हो, आपस में एक छोटा सा संगठन बनाओ, दो लोगों की आवश्यकता है, यदि पूरा परिवार ज्ञान में है तो रात में सोने से पहले बैठकर डिस्कस करो, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, क्योंकि संसार में व्यर्थ का अंबार लगा पड़ा है, हवाओं में व्यर्थ है, विकार है, वासनाएं हैं, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना, और ये ज्ञान ऐसा है कि अकेले में एकांत में पढ़ लिए और हो गया ऐसा नहीं, इस ज्ञान की चर्चा की आवश्यकता है, डिस्कशन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, इसे समझने की आवश्यकता है। क्यों अव्यक्त वाणियों में बार बार भगवान कहते हैं समझा? जगदीश भाई जी कहते थे कुछ भी नहीं समझा, इसलिए तो वो कह रहा है, उसे डाउट है, संदिग्ध है वो कि इन्होंने समझा भी, इसलिए हर मुरली में आखिरी में क्या आता है, पहले तो बहुत अच्छा अच्छा आता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम याऊ त्याऊ, तुम ऐसे तुम वैसे, और लास्ट में क्या आता है, समझा, अर्थात शायद नहीं समझा। पहले तो ज्ञान में ऊपर चढ़ना है, इस जैसा योग में अनुभव होता है अशरीरीपन का, वैसे ही ज्ञान का चिंतन करते करते भी अशरीरीपन का अनुभव हो, वो वैकुंठ राम रस है। इस संसार में जितने महान लेखक हुए, इस संसार में जितने महान कवि हुए, इस संसार में जितने महान मूर्तिकार हुए, आर्टिस्ट कलाकार, वो सभी एकांत प्रेमी थे, एकांत में जाते थे और चिंतन करते थे, आवाज में कल की अव्यक्त कल की साकार मुरली, गाजे बाजे और तालियों ने आवाज आत्मा को थका दिया है। थर्ड लाइन, गाजे बाजे और तालियों ने आत्मा को थकाया है। आत्मा की थकान मिटने का मिटाने का साधन है मौन, साइलेंस, एकांत, सॉलिट्यूड, चिंतन, अध्ययन। इसके लिए ज्ञान की चर्चा, एकांत में जाओ, टेरेस में जाओ, गार्डन में जाओ, प्राकृतिक स्थान जहां है वहां जाओ और वहां जाकर वहां पर निसर्ग के सानिध्य में जाकर मुरली का अध्ययन करो। भगवान क्या कह रहा है? ये शायद मुझे तो नहीं कह रहा है, कहीं वो मैं तो नहीं, या फिर ये पूरी मुरली से मेरे लिए कौन सी बात आज उसने कही है? टाइम निकालना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा समय को व्यस्त दिनचर्या से। सेवाएं इतना विस्तार है, परंतु फिर भी समय निकालकर ज्ञान का अध्ययन। केवल क्लासेस सुनने से कुछ नहीं होगा, वो उधार का चिंतन है। उधार की जिंदगी कब तक? स्वयं स्वयं के चिंतक बनो, स्वयं चिंतन की धारा अपने अंदर प्रवाहित करो। ये भगवान ने कहा, इसका क्या अर्थ है? वाक्यार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, भावार्थ क्या है? चार चीजों को ढूंढना है मुरली के एक एक वाक्य से। शब्दार्थ, ये जो शब्द प्रयोग बाबा ने किया है, ये पहले कभी नहीं सुना है। क्या अर्थ है? नहीं पता, बहन जी से पूछो। बाप आए हैं तुम्हें चौप चीनी खिलाने, ये चौप चीनी क्या होता है? इस यज्ञ में डेंगिया पड़ेगी, ये डेंगी क्या होता है? बाप को उकीर रहता है बच्चों को वापस ले जाने का, ये उकीर क्या है? नया शब्द आ जाए तो रुक जाओ। बहुत सारे सिंधी शब्द है मुरलियों में, इंग्लिश शब्द है, सिंधी शब्द है, मराठी शब्द है, गुजराती शब्द है, मैथिली शब्द है, मल्टीलिंग्युअल है मुरली, कोई एक भाषा नहीं है मुरली में, और एक भाषा तो अभी तक पता नहीं कौन सी है। बाप का बनंती, मुरली सुनंती, मुरली धारण करंती, दूसरों को मुरली सुनावंती, कोर्स करंती, करावंती, यहां से बाहर जावंती, फिर दूसरों को बाप का बनावंती, और फिर बाप को फारकती देवंती। अभी ये भाषा कौन सी है इसका अभी तक पता नहीं चला है, बाबा से ही पूछना पड़ेगा, ये संस्कृत है, हिंदी है, या कौन सी भाषा है? तो बाबा की संस्कृत। तो शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है? जो साधारण शब्द दिखाई दे रहे उनका भाव कुछ और ही है। स्पीकर यहां पर बैठा है, ऑडियंस यहां है, वो यहां बैठकर बोल रहा है, उसकी बातों को आप यहां बैठ के केवल शब्द हाथ में आ रहे, परंतु वो भाव अगर समझना है तो उसके समान ही स्थिति होनी चाहिए। जिस स्थिति में अव्यक्त वाक्य उच्चारण किए जा रहे हैं, उसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही उन महावाक्यों को समझा जाता है, नहीं तो हाथ में केवल शब्द है, केवल शब्द, और खो गए। वाक्यार्थ, पूरे वाक्य का अर्थ क्या है? गुणार्थ, गूढ़ अर्थ, गोपनीय अर्थ, सीक्रेट, क्या मीनिंग है? ज्ञान में ऊंचा जाना है, अर्थात चिंतन की धारा बहानी है। सोचो, स्वीकार नहीं करो तुरंत। बाबा ने कहा यह अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, यह ब्लाइंड फेथ नहीं है। बाप जो कहते हैं वो जज करो, मैं राइट हूं या शास्त्रों में जो लिखा है वो राइट है। जो गाय भोजन करने के बाद उगारती नहीं है वो क्या है? बीमार। जो बच्चे ज्ञान मुरली सुनने के बाद ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते गोया, बीमार है। कौन कौन बीमार है, हाथ खड़ा करेंगे? बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं बहन जी। बहुत हाथ खड़े हो रहे, परंतु सच्चाई है उसके भी मार्क्स मिलेंगे, हाथ खड़े करने के भी मार्क्स हैं यहां पर। फर्स्ट स्टेप है स्वीकार करो, हम नहीं कर रहे, आज से करेंगे, इस भट्टी से करेंगे, आज के बाद जो जो मुरलियां चलेगी, जो जो वरदान आएगा, जो जो स्लोगन आएगा, उसके बारे में सोचेंगे, ये आज क्यों कहा, कौन सी की, कौन से किचन, ये कौन सी डायमंड की है, डायमंड की क्यों कहा, किचन क्यों कहा, सर्व संबंधों को चिंतन सोचेंगे, अध्ययन करेंगे। एक टॉपिक रोज लो और लिखो, क्या करेंगे, रोज एक टॉपिक पर जो लिख सकते हैं लिखे, मुरली से टॉपिक निकालो और लिखना चालू, चिंतन। आपको एक टॉपिक हम यहां दे रहे हैं अभी के अभी, बाद में लिखना, एक सेकंड में कौन कौन सी सेवाएं हो सकती है अभी नहीं बतानी है, मनसा तो बिल्कुल नहीं बताना, एक सेकंड में चिंतन करो, आज दिन भर में एक सेकंड में क्या क्या सेवाएं हो सकती है। आज बोला है सुबह सेवा एक सेकंड की है। दूसरा प्रश्न, विश्व कल्याण के ठेकेदार का क्या क्या कर्तव्य है, 10 पॉइंट लिखनी है, होमवर्क लिख लो, विश्व कल्याण के जो ठेकेदार है उनका क्या क्या कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न, एक सेकंड में कौन कौन सा योग किया जा सकता है, कौन कौन से योग के प्रयोग किए जा सकते हैं। चौथा प्रश्न, एक सेकंड में दूसरों को यदि हमें कुछ अनुभव कराना है तो कैसे कराए, टाइम मिला है केवल एक सेकंड, बाबा कहते हैं एक सेकंड बहुत है। इन प्रश्नों के ऊपर चिंतन, रोज की मुरली से प्रश्न निकालने हैं, बहुत धारणा के लिए सार वरदान स्लोगन बहुत लिख लिया, अभी खाली टॉपिक्स लिखना चालू करो, जिसका सारे दिन भर में चिंतन करना है कि ये आज कहा। तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, ईश्वरीय स्टूडेंट के 10 लक्षण क्या क्या है, ये एक अगला होमवर्क भी लिख के रखो। एक स्मार्ट स्टूडेंट के क्या क्या लक्षण है लिखना है, सुन बहुत लिया अब चिंतन करना है। अगर ज्ञान में चढ़ना है ऊपर तो चिंतन का आधार लेना पड़ेगा, चिंतन होगा एकांत में, चिंतन होगा मौन में, चिंतन होगा प्रकृति के गोद में बैठकर, जहां कल कल निनाद करते झरने हैं, आकाश है, चिड़ियों की चहचहाट है, पर्वत है, नदी है, समंदर है, और आप कहेंगे ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, सड़क तो है, छत तो है, कोई कहेगा छत भी नहीं है हमारे पास, सुबह का समय है, अमृत वेले के बाद का समय 7 बजे तक या 6:30 बजे तक, 4:45 से लेके तो 6:30 तक, ये समय है ज्ञान के चिंतन का। एक भाई था, उसको नींद इतनी आती थी, वो क्या करता था, अमृत वेले के बाद, अमृत वेले उठता था और खटिया को पूरा बिस्तर बिस्तर लपेट के एक तरफ और खटिया एकदम खड़ी, उसके अमृत वेले के बाद उसको नींद आती थी, परंतु जाके देखता था इतना वापस कौन लगाएगा सारा अरेंजमेंट। लॉन्ग वॉक पर चले जाओ, एकांत, कोई क्लास सुनो या कोई एक टॉपिक खुद को दे दो और उसके ऊपर चिंतन करते करते निकल जाओ। हमको याद है कुछ समय पहले नकी लेक देखा है सबने, एक बार हम वहां पर अभी राउंड लगाने ही वाले थे तो एक कोई व्यक्ति आ गया, कोई बहुत पुराना पेशेंट, हमको तो याद नहीं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पहचाना, मैंने कहा हाँ बोलो, तो उन्होंने बोला आपने मेरी माता जी का इलाज किया था, हाँ अभी तो कहाँ कितने साल हो गए हमको याद नहीं, हाँ तो उसने कहा आप नहीं होते ना तो मेरी माता जी ना मर गई होती, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, और वो चला गया। ठीक है, हमारे मन में संकल्प आया बाबा तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, ये संकल्प और इसका चिंतन करते करते नक्की का राउंड चालू, आते आते लगभग 50 पॉइंट निकल गए, यदि तुम ना होते तो मैं क्या होता, कितना अच्छा प्रश्न है। चिंतन। दूसरा है योग, योग में स्वयं को आगे बढ़ाना। योग अर्थात जिसमें अशरीरी स्थिति हो। एक ही योग जो 10 साल पहले सीखा था, मैं आत्मा हूं और शांति शांत स्वरूप हूं और प्रेम स्वरूप हूं और आनंद स्वरूप, वही चालू है। योग में भी हर दिन नवीनता हो। जो कल योग किया था वो आज नहीं, जो सुबह किया था वो शाम को नहीं, हर दिन नया नया। बाबा ने कहा है पिकनिक करो बाबा के साथ। अभी अभी कुछ दिन पहले वरदान था, संकल्प का स्विच ऑन करो, बुद्धि के प्लेन में बैठो, डबल रिफाइन पेट्रोल भरो, डबल रिफाइन, मैं आत्मा निराकार और सर्व संबंध उससे, और उड़ान भरो, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, ज्ञान सूर्य से किरने लो, ज्ञान चंद्रमा से चांदनी लो, खेलकूद करो, पिकनिक करो, तीनों लोक की सैर करो। हर दिन के वरदान से, मुरली से नई ड्रिल खोजनी है, नई ड्रिल। टेक्स्ट को ड्रिल में कन्वर्ट कर दो, जो लिखा हुआ है उसका विजुलाइज करो उसको। जैसे आज की मुरली, कुमारियों से मुलाकात, कुमारी अर्थात निर्बंधन, पिंजड़े का पंछी नहीं, स्वतंत्र पंछी। अनुभव करो मैं आत्मा स्वतंत्र पंछी हूं, आकाश में उड़ती जा रही हूं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। योग की आग लगी हुई है यहां पर, अग्नि, कोई बंधन मेरे पास नहीं आ सकता। विजुअलाइजेशन, एक विजन क्रिएट करनी है और वो होगी। जो जो हम सोचेंगे और जो जो हम देखेंगे वो होगा। एज यू थिंक इट सो यू बिकम इट। हमारे मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थे जो डीन थे, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि जब मैं बहुत छोटा था और फर्स्ट MBBS में मेरी एडमिशन हो गई थी और इस कॉलेज में आया था पहली बार, डर के, रैगिंग के डर के, डर डरा डरा सा था, डर डर के इस 18 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर, अभी उनकी उम्र 75 ऐसे कुछ हो गई थी। वो अनुभव सुना रहे थे कि उस दिन मैंने संकल्प किया था इसी मेडिकल कॉलेज का मैं एक दिन डीन बनूंगा। इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा संकल्प कर रहा है, और उस संकल्प को उन्होंने देखा, विजुअलाइज, कलराइज, पिक्चराइज, रोज देखा रोज देखा, और एक दिन बन गए। जो हम सोचेंगे, जो हम कल्पना करेंगे, अपने आप को देखो, बाबा ने कहा है देखो, तुम्हें फरिश्ता बनना नहीं है, तुम हो। ये विधि है बनने की, मैं हूं, देखना, और मैं बन गया, ये विधि है। तो योग के नए नए प्रयोग, नई नई ड्रिल्स, हर दिन नया योग, हर दिन नया प्रयोग। क्रिएट करो नए नए, क्रिएटिविटी लाओ नई नई। संसार में लोग फिल्में बनाते हैं, यदि जो फिल्म आज बनी वैसी की वैसी फिल्म बाद में बनाते हैं कभी? कभी नहीं। क्रिएटिविटी करते हैं सब लोग, हम योग में क्रिएटिव होना है, नवीनता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, तो ही बोर नहीं होंगे। नहीं तो योग में कोई इधर गिरता है, कोई इधर गिरता है, कोई इस ओर कोई उस ओर। एक बार मेडिटेशन हॉल में मनोरिंद्रा दादी मुरली चला रहे थे, तो सामने माताएं बैठी थी, सारी सो रही थी। दादी ने कहा चलो उठो सबके सब और पीछे जाके खड़ी हो जाओ, पीछे जो दीवार है वहां जाके खड़ी हो जाओ। तो माता इतनी महारती थी सोने में कि खड़े खड़े सोने चालू कर दिया। किसी को मुरली में नींद आती है एक कैटेगरी, किसी को योग में नींद आती है सेकेंड कैटेगरी, किसी को क्लास में नींद आती है, क्लास अर्थात ज्ञान योग की क्लासेस। ब्राह्मणों की भी सोने की अलग अलग कैटेगरी है। योग में नवीनता होगी तो नींद नहीं आएगी। यहां जिस जिस को नींद आ रही है वो हाथ खड़ा करना है एक बार, इतने इधर बाकी लोग देखना नहीं। स्वयं स्वयं को जगाना है। कौन जगाएगा? हम दूसरों को जगाने वाले हैं। ORC के आशा बहन जी ने एक बार बहनों को खड़ा किया और एक चित्र दिखाया, इस चित्र में क्या है? तो बहनों ने कहा चित्र में क्या है, वही कोर्स वाला चित्र है, एक कुंभकर्ण है लेटा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी जल डाल रही है, दूसरे कान से निकल रहा है, तो ये तो हमको पता है। तो दीदी ने कहा ठीक से देखो। देखा तो कुंभकर्ण को बैच लगा हुआ था, वो ब्राह्मण ही सो रहा है, वो ब्राह्मण के एक कान से इधर से निकलकर इधर से जा रहा है ज्ञान अमृत। हम भी यदि सोए हैं तो दूसरों को हम क्या जगाएंगे? ब्राह्मण भी सोया हुआ है, संसार अज्ञान की नींद में सोया है, ब्राह्मण विस्मृति की नींद में सोए है, ब्राह्मण आलस की नींद में, अलबेलेपन की नींद में, गफलत की नींद में, स्वयं स्वयं को जगाना है, जागृत चेतना, तस्मात जागृत जागृत जागृत। तमसो मां ज्योतिर्गमय का पाठ पढ़ाने वाले हम भी यदि ये सो जाए, आज सुबह की साकार मुरली, वो लोग नगाड़े बजा रहे, चिमटे बजा रहे, आओ आओ पुकार रहे, भगत बाहर खड़े हैं और मंदिर की देवी नींद में, तो क्या कहेंगे? और देवी या फिर दुखी है, वो दृश्य देखा है कितना अच्छा है, दुर्गा मां अष्टशक्तिधारी शेर पर सवार, पीछे भगत मां मां कहकर पुकार रहे और दुर्गा देवी भाग रही है, बाबा बाबा मुझे बचाओ, मैं खुद ही दुखी हूं, मेरा बच्चा नहीं सुनता, पति ज्ञान में नहीं चलता, इसकी बुद्धि का ताला खोलो, उसकी बुद्धि का ताला खोलो, ये सहयोगी नहीं है, वो सहयोगी नहीं है, ये मुझे जाने नहीं देते, ये मुझे ये करते रहते। दुर्गा देवी भाग रही है शेर पर और पीछे से भक्त, हे जगत जननी मां, हे पाप नाशिनी, मेरी मदद करो। और दुर्गा देवी कहती है तुम रहने दो, पहले मैं ही दुखी हूं, बाबा पहले तुम मेरा सुनो, फिर मैं उनका सुनूंगी। तीसरा धारणा, कौन आत्मा कितना जल्दी इस ज्ञान को धारण करती है, कौन कब से है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितना फास्ट इसको धारण किया है। और इस ज्ञान की धारणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, अनब्रोकन सेलिबसी, जहां ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है, जहां दृष्टि और वृत्ति में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जहां विषय वासनाएं उत्पन्न हो रही है और देह आकर्षित कर रहा है चेतना को, वहां यह ज्ञान धारण ही नहीं हो सकता। जो जितना शुद्ध है, पवित्र है, देह और देह की दुनिया से निरस हो गया है, कोई आकर्षण नहीं, जान लिया है इस देह में क्या है, हड्डी और मांस, मलमूत्र से भरा यह देह, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं। काहे का सौंदर्य और कैसा सौंदर्य, भ्रम है, मिथ्या है, संसार में वैराग की परिभाषा दी है किसी ने दो शब्दों में, वैराग अर्थात शरीर मिट्टी और संसार असार, सारा संसार इस देह में फंसा है, सारा मीडिया, सारे टीवी चैनल, सारा सिनेमा, विकार ही विकार। इसके लिए बाबा ने यह आकर नहीं कहा कि बाबा क्रोध से मुक्त करने आया है, लोभ से मुक्त करने आया है, मैं आया हूं केवल एक कार्य के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए। पतित क्रोधी को नहीं कहा जाता, लोभी को नहीं कहा जाता, कामी को कहा जाता है। पांचवी मंदिर से गिरना क्रोधी के लिए नहीं है, काला मुंह करना क्रोधी के लिए नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 1974, एक समय आएगा मधुबन के पांडव भवन के गेट के सामने कोई आकर कहेगा कि मेरा सिर काट दो, फिर भी बाबा ने कहा है मुझे आने दो, बाबा ने कहा सिर काट कर दोगे तो भी आने नहीं देंगे, किसी भी पतित को एंट्री नहीं होगी और यहां पर कोई छिप नहीं सकेगा, कोई कितना भी छिपाए नहीं छिप सकेगा। ये शीश महल है, इस दरबार में कोई छिप नहीं सकता। क्या क्या किसने किया है सब कुछ स्पष्ट होगा, कितना हमने पवित्रता की धारणा की है। 15th November 2003, इस मुरली को जिसने नहीं पढ़ा हो जाकर पढ़ ले। 15th November 2003, संपूर्ण पवित्रता, अर्थात सफेद कागज पर जरा भी दाग ना हो। कोई अगर ये कहता है थोड़ा सा किया ना, थोड़ा सा नहीं बहुत किया, कान खोल कर सुन लो। अव्यक्त महावाक्य कई सेंटरों पर लगा हुआ है, ये बाबा का चित्र देखा होगा, धर्मराज का रूप है। कान खोल कर सुन लो, दोनों कान खोल के सुनो। इस सब्जेक्ट में ब्रह्मा के ऊपर कलंक लगाए गए, क्यों? पवित्रता की वजह से। और यदि इस यज्ञ की जो आधारशिला है, सारी दादियों ने और बड़ी बहनों ने जो कुछ सहन किया पवित्रता के लिए सहन किया, और यदि हमारी पवित्रता की ही धारणा कमजोर है, यदि बार बार हम वो चित्र देख रहे हैं, वो पोस्टर देख रहे, वो वीडियो देख रहे, वो ऑडियो देख रहे, वो टेक्स्ट, वो किताबें, वो नॉवेल्स, वो मीडिया जिससे कामोत्तेजना उत्पन्न हो रही है, वो सारे स्टिमुलाय फिलिप उत्तेजक, यदि काम अभी भी हमें परेशान कर रहा है तो इस ज्ञान को भी हम धारण नहीं कर सकेंगे। ज्ञान प्रकाश है, हृदय के अंधकार को ज्ञान ही मिटा सकता है, और उसके लिए प्यूरिटी चाहिए। इस भट्टी से एक प्रतिज्ञा हरेक को करनी है, संपूर्ण पवित्रता की। कुमारों से मुलाकात 1969, ये देह सांप है, इन्वर्टेड कॉमा, सांप में विष होता है। सभी कुमार सभी कुमारियां आज से प्रतिज्ञा करेंगे कि हम मस्तक मणि के अतिरिक्त इस सांप को कभी नहीं देखेंगे। पवित्रता साधना है, एक दिन की नहीं, हर दिन की। हर दिन अमृत वेले दो, एक स्वयं से प्रतिज्ञा करना है, एक बाबा से प्रतिज्ञा करना है। वरदानी हस्त सामने रखा है उसने, संपूर्ण पवित्र भव। चौथी बात जिसमें ऊपर चढ़ना है वो है सेवा। स्थूल सेवाएं हमने बहुत कर ली, अब बाबा को आवश्यकता है सूक्ष्म सेवाधारियों को, कि जो अपने संकल्प से विश्व की सेवा करे, जो अपनी स्थिति से विश्व की सेवा करे, जो अपने वाइब्रेशन से विश्व की सेवा करे। इस योग्य हमने स्वयं को कितना बनाया है। सारे संसार की आत्माएं दुखी है, उदास है, पुकार रही है, तड़प रही है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अभी अभी साकार मुरली चली थी, तुम हो परफेक्ट ब्राह्मण, तुम हो रिस्पॉन्सिबल ब्राह्मण, तुम हो ऑलराउंडर ब्राह्मण। हमारे लिए रुका हुआ है कार्य, ये चारों ही चीजों में ऊपर जाना है। यदि नीचे आए तो चकनाचूर, ज्ञान में नीचे आना अर्थात ज्ञान साधारण सा लगना, चकनाचूर हो जाना अर्थात उदास, दुखी, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। बाबा ने कहा है तुम्हें दंड मिलेगा, जो सजा कभी जेल में भी नहीं खाई हो वो धर्मराज द्वारा दी जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले था, 3-4 दिन पहले। सजा क्या है? कोई धर्मराज बैठा है उधर दंडा लेकर हाथ में? स्थिति का गिर जाना ही दंड है, अमृत वेला न होना ही दंड है, उदासी लगना ही दंड है, ब्राह्मण बने पर कोई खुशी नहीं है यही दंड है, मुरली में बैठे हैं पर रस नहीं है, ब्राह्मण परिवार में है यह प्रभु परिवार परंतु सबके अवगुण दिखाई दे रहे हैं, सब सांप जैसे दिखाई दे रहे हैं, इस परिवार में भी ये दंड है। परिवार का सुख नहीं, ज्ञान का सुख नहीं, योग पता नहीं लास्ट कब लगा था। भगवान अगर अपना व्हाट्सएप चेक करे तो हमारा लास्ट सीन पता नहीं कब है। हम गए नहीं उसके पास, बुद्धि जाती नहीं है परम धाम। योग करो तो बस खाली तुम ज्ञान के सागर हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम आनंद के सागर हो गया, चलो काम पूरा हुआ। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, थोड़ा बहुत लगा दिया और क्या किया पता ही नहीं। एक माता थी, वो जगदीश भाई से कहने लगी, भाई साहब मुझे ऐसा योग में अनुभव होता है जैसे परम धाम भी नीचे छूट गया और उसके ऊपर मैं हूं, परम धाम से ऊपर, परम धाम से ऊपर की अवस्था। परम धाम के ऊपर तो क्या है पता है ना, कौन सा लोक है? निद्रा लोक, सूक्ष्म वतन परम धाम, और अगर किसी को उसके ऊपर की अवस्था हो रही हो तो वो निद्रा लोक समझ लेना, वो दंड है, वो चकनाचूर हो जाना है, सेवा में मन नहीं लगना, उदासी सी रहना। सेवा बता दी तो कैसे, तो भी अभी अभी मुरली चली थी, परम पूज्य बनने का आधार एक है मजबूरी से, एक है दिखावे से, एक है फर्ज निभाना, एक है ड्यूटी निभाना, नियम पालन करना, बस ये चार प्रकार की भक्त आत्माएं। जैसे उधर वैसे इधर भी, दिखावे की सेवा, ऊपर ऊपर की सेवा, बताने के लिए सेवा, नाम की सेवा, हमारा नाम आ जाए, मजबूरी से मर मर कर दुखी हो कर ढूंढ रहे कोई दूसरा मिल जाए तो उसको थोप उसके हाथ में थमा दे और हम चले, और फिर बहन जी को बता देंगे हमको काम आ गया था। चकनाचूर सेवा भाग्य की बन रहा है, संगम पर सेवाओं की गंगा बह रही है। योग नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, यहां हाथ धो लो, पुण्य बन जाएगा, सबसे सहज साधन है ये। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो करो, नहीं तो सेवाओं में मन नहीं लगता, धारणाएं हो नहीं रही है। करके देख लिया, पहले बहुत किया, फिर बाद में कुछ नहीं हो रहा है। अभी बुद्धि जा रही है टीवी सीरियल इंटरनेट मोबाइल ये सब में फंसे हुए हैं। एक भाई था, वो कह रहा था हमको कुछ समय पहले, अशोक भाई की क्लास सुनने जा रहा हूं। हमने कहा कौन से अशोक भाई? 9 बजे सम्राट अशोक, टीवी पर सीरियल चलते हैं, सब याद रहते हैं सबको, कौन सा सीरियल कब है, ये है वो है, सारी बुद्धि टीवी में है। रात को सोते सोते 11 बज जाते, कभी 11 बजे, 11:30, कभी 12, नेट सर्फिंग, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक क्लिक इधर ब्रह्मा कुमार से सीधा शूद्र कुमार, एक क्लिक। लास्ट बात बता रहे हैं, जयंती बहन जी ने यह अनुभव सुनाया था विदेश के किसी भाई का हॉस्पिटल में। एक भाई जिसने अनन्य सेवाएं की है 40 साल से, उससे भी ज्यादा शायद, कई कई सेवाओं की शुरुआत की है, अचानक एक दिन कभी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है सेंटर में, कभी अच्छा लगता है, उदास सा लगता है, चुप गुमसुम सा रहता है, आता जरूर है परंतु पहले जो उमंग उत्साह था सेवा का, इतनी सारा उसने सब कुछ किया, अब नहीं रहा। उससे पूछा 2-3 बार, उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे कहता था परहैप्स गॉड डजंट वांट मी टू वर्क एनी मोर, डू एनी मोर सेवा, शायद बाबा चाहता है कि अब मैं थोड़ा आराम करूं, ऐसे सब उत्तर देता था। पर उसको पूछा गया फिर बाद में, और फिर 2-3 बहनों को उसके साथ बिठाया, पूछा बताओ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो गया है? तो उसने सच्चाई बता दी। उसने कहा दिन भर तो सेवा करता था, रात में YouTube, उस पर गलत गलत देखना चालू कर दिया, देखते देखते 11 बज जाते थे, 12 बज जाते थे, और फिर अमृत वेला उठता तो था परंतु जहां देह का आकर्षण हो गया वहां पर आत्मा का आकर्षण स्वतः ही कम हो जाएगा, और धीरे धीरे स्थिति खो गई, खुशी खो गई, योग खो गया, सेवा खो गई, चकनाचूर। यही दंड है इस ब्राह्मण जीवन में। इसलिए स्वयं को सुरक्षित रखना कि ये जो प्रभाव है कलियुगी सारे, इसके प्रभाव में मुझे नहीं आना है। साधन साध्य नहीं है, साधन साधन है, साधनों में फंस नहीं जाना है, ये बहुत अच्छा है, परंतु ये साधन है, यही सब कुछ नहीं है। सारा ब्राह्मण परिवार इसी में डूबा हुआ है। डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता है। तो चारों ही चीजों में ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं आना है। नीचे आए तो गए। अभी 5 मिनट का एक ब्रेक होगा। ओम शांति।